अब आगे? आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी। अचानक से इतने बड़े शानदार घर में चूहा और कॉकरोच कहां से आ सकते हैं? आस्था का डर के मारे बुरा हाल था। डर के मारे वो बेड पर चढ़ गई थी और चिल्लाने लगी, अरमान जी बचाओ, चीखने लगी थी। लेकिन आस्था की आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं अरमान सिंघानिया इस वक्त सबके साथ हॉल में मौजूद था और अरमान ने जल्दी ही मारिया और टाइगर को मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश देने लगे थे, स्पेशली मारिया को, कि वो 24 घंटे आस्था के आसपास रहे। नानी माँ, सुमित, राधिका, आकाश, ध्रुव, आहान, दादाजी सब मायूस से एक जगह बैठे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वहीं आस्था को अचानक एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुल गया है। तुरंत दरवाज़ा खुलते ही आस्था ने जोरों से चीख मार दी। अब आस्था की चीख पूरे घर में गूंज उठी थी और सभी जो हॉल में बैठे थे, अब अरमान समेत उन सबको आस्था की चीख सुनाई दी। सब पूरी तरह से चौंक गए थे और सभी फिक्रमंद होकर आस्था के कमरे की ओर भागे थे। अरमान उन सब में सबसे आगे था और सब एक साथ आगे पीछे अरमान के कमरे में जमा हो गए थे। जैसे ही वो सब वहां पहुंचे, सब हैरानी से वहां जाकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्होंने आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। वहीं अरमान अब घूरकर आस्था को देखने लगा था, क्योंकि आस्था बेड पर पड़े पड़े अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर नींद में चीख रही थी, चिल्ला रही थी और चीखते हुए कह रही थी, अरमान जी बचाओ, अरमान जी बचाओ। अब सब समझ चुके थे कि आस्था कोई बुरा सपना देख रही है और इसीलिए वो इस तरह से चीख चिल्ला रही है। नानी माँ आस्था की तरफ बढ़ी और सोई हुई आस्था के सिर पर धीरे से हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाने लगी। प्यार से बोली, जाग जा गोरी बेटी, जाग जा। आस्था ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे उसने नानी माँ को अपनी आंखों के सामने देखा, उसने तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया था और जोर से चीखते हुए बोली, नानी, नानी माँ, अरमान जी ने हमारे कमरे में चूहे छोड़ दिए, साथ साथ बहुत सारे कॉकरोच छोड़ दिए हैं। और आस्था तुरंत आंखें बंद किए हुए चूहा और कॉकरोच की तरफ उंगली दिखाते हुए इशारा करने लगी थी कि नानी माँ, हमारे कमरे में चूहे और कॉकरोच हैं और बहुत सारे, और हमारे कपड़ों पर भी चढ़े हुए हैं, हमें बचाओ। तब नानी आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन बेटी यहां पर तो कुछ नहीं है, अपने आप को संभालो बेटा, तूने जरूर कोई ना कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कहकर नानी माँ आस्था को संभालने की कोशिश करने लगी थी। वहीं अरमान आस्था की बातें सुनकर उसे आईब्रो उठाते हुए घूरने लगा था। साथ साथ अरमान की हार्टबीट इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब आस्था को सही सलामत देखकर उसके सांस थोड़े थोड़े नॉर्मल हुए थे, लेकिन अब आस्था की उठपटांग बातें सुनकर वो उसे घूर कर देखने लगा था, क्योंकि जब अरमान ने आस्था के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं आस्था को कुछ हो न गया हो। लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर अरमान अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। आज पहली बार अरमान को डर का एहसास हुआ था। वहीं नानी माँ आस्था को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा गोरी बेटी, शांत हो जा, तुम एक बुरा सपना देख रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, देखो देखो ध्यान से, हम सब तुम्हारे पास हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को शांत करने लगी थी। तभी अरमान के लिए अब खड़े रहना मुश्किल हो चुका था और वो फटाफट से आस्था के पास गया और बिना किसी की परवाह किए उसने आस्था को जोरों से गले से लगा लिया था। अब आस्था को इस तरह से सबके सामने गले से लगने पर नानी माँ, दादाजी, रश्मि, आकाश, ध्रुव, आहान सभी के चेहरे पर एक छोटी सी बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी और सभी एक दूसरे की ओर उनकी ओर ना देखकर इधर उधर झांकने लगे थे। वहीं नानी माँ भी अब समझ गई थी कि उनके यहाँ रुके रहना अब ठीक नहीं है, इसीलिए नानी माँ जल्दी ही बहाना बनाते हुए वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं आस्था अरमान इस तरह से गले से लगाए जाने पर उसे एहसास हो गया कि इस वक्त वो एक बुरा ख्वाब देख रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और अब उसने अपने ही सर पर एक टपली मार दी थी और उसने भी वापस से अरमान को कसकर गले से लगा लिया था। तब तक सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हुए वहां से बाहर निकल गए थे। अब अरमान और आस्था दोनों अकेले थे। तब अरमान ने खुद को रिलैक्स करने के बाद देखा कि आस्था बिल्कुल ठीक है, तब जाकर आस्था को छोड़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछता है, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों चिल्लाई? आप जानती हैं, आपको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर मेरे दिल की क्या हालत हो गई थी। ये देखिए, ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था का एक हाथ उठाकर अपने दिल की धड़कनों पर रख दिया। और आज पहली बार आस्था को इस तरह से अरमान के दिल की धड़कन पर हाथ रख महसूस करना बेहद अच्छा लग रहा था। और अपने आप ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। और अगले ही पल वो पपी फेस बनाकर बताती हैं, हम क्या करें, हमने ख्वाब देखा, हमें लगा कि आपने हमारे कमरे में काफी सारे चूहे छोड़ दिए हैं, इसीलिए बस हम डर गए थे। आपने बोला था ना कि हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप हमें सजा देंगे। ये बोलकर आस्था अरमान की ओर देखने लगती हैं। वहीं अरमान को आस्था का इस तरह से देखना, इस तरह से उसे बातें करना बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वो तो शुरू से यही चाहता था कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उससे बातें करे और दिल खोलकर बातें करे, उसे इतना सा भी न डरे। और वाकई अब आस्था बिल्कुल नॉर्मली उससे बातें कर रही थी तो उसे अच्छा लगा। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोलता है, सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए, एक मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही अरमान ने यह बोला कि अपनी आंखें बंद कीजिए, आस्था ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और अरमान को घूरने लगी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, जब भी मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता हूं तुम अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हो? हाँ, मैंने बोला ना अपनी आंखें बंद कर लो, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगी, देखिए आप हमें ज्यादा मत मारिएगा और चूहे तो हमारे कमरे में बिल्कुल भी मत छोड़िए और ना ही हमें अंधेरे में छोड़िएगा, हमें उन सब चीजों से बहुत डर लगता है, हम सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। हम जानते हैं हमने गलती किया, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें हमारी पहली गलती समझकर माफ कर दोगे। ये कहते हुए आस्था अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी और बड़बड़ाई जा रही थी। तभी अरमान आगे बढ़ा और अचानक अरमान ने आस्था के माथे को चूमकर उसके दोनों गालों को चूमा, उसके बाद उसकी छोटी सी प्यारी सी नाक को लाइट किस किया और उसके बाद आस्था के खूबसूरत से होठों पर अपने होठों को रख दिया था। अब आस्था मा ही करती रह गई थी, लेकिन अरमान तो आस्था को बड़े ही सॉफ्टली और जेंटल में किस कर रहा था। और तब अरमान ने साइड टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर अपने दरवाजे को अच्छे से क्लोज कर दिया। आस्था को कुछ नहीं पता था कि आस्था तो उस वक्त अरमान के प्यार में पूरी तरह से खो गई थी और अरमान ने जल्दी ही आस्था को उसके कपड़ों से आजाद कर दिया था और उसे ढेर सारा प्यार जताने लगा था। आस्था अरमान का प्यार पाकर सब कुछ भूल गई थी। तब अरमान रुकते हुए बोला, आपकी सजा यही रहेगी कि आज आप खुद से मुझे सारा प्यार करेंगी। जैसे ही अरमान ने एक ऐसे मोमेंट पर आकर आस्था को ये बात बोली, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि इस वक्त वो दोनों इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके थे कि एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन अरमान ने एन मोमेंट पर आस्था से बोला कि उसकी सजा यही है कि उसे खुद आगे बढ़कर अरमान से प्यार करना होगा। अब आस्था अरमान की बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा उठी थी, वो भला आगे बढ़कर खुद से कैसे अरमान से प्यार कर सकती थी। लेकिन आस्था तो चारों खाने चित हो गई थी। और फिर अरमान शरारती अंदाज में बोला, सजा है, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था
और उसने आगे बढ़कर खुद से अरमान के चेस्ट पर किस करना स्टार्ट किया और उसके होठों को स्मूथ किस करना शुरू कर दिया था। आस्था की हालत तो सब काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन अरमान आस्था का प्यार करना बेहद एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सबके सब इस वक्त हॉल में जमा थे। वहीं आहान बोला, ये आस्था भाभी बिना देखा आपने कैसे बच्चों की तरह डर गई थी, और ऐसा बोलकर आहान ध्रुव से कहने लगा था। तभी आकाश, सुमित, ध्रुव आहान को घूर कर बोले, अच्छा तुम दोनों चुप करोगे? एक तो वो बिचारी कितना ज्यादा डरी हुई थी, लगता है उसे बुरा सपना आ गया होगा। तब नानी माँ बोली, अरे आप लोग हमारी गोरी को इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते, अरे वो बहुत बहादुर है, वो बस डर गई होंगी। आज बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते जो बच गया। तब अचानक रौनक अपना सर झुकाकर आगे आती हैं और नानी माँ के सामने खड़ी होकर बोलती हैं, नानी माँ प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, इसमें सरासर हमारी गलती है, हमें अगर हम ही उन्हें लेकर नहीं जाते तो अच्छा रहता। ये बोलकर रौनक नानी माँ की ओर देखने लगती हैं। तभी आहन को तो मौका मिल गया था रौनक पर बरसने का और वो बोलता है, हाँ हाँ देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इन लोगों ने अपनी गलती तो मानी। गलती इसमें आस्था भाभी की नहीं है, सरासर इस लड़की की है जो हमेशा लड़का बनकर घूमती रहती है, लेकिन ये एक नंबर की छिपकली है। ऐसा बोलकर आहन रौनक को घूरने लगा था। वहीं रौनक को उस वक्त आहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस वक्त वो नानी माँ के सामने सर झुकाकर इसलिए खड़ी थी ताकि नानी माँ उसे जो सज़ा देगी उसे मंजूर होगी। लेकिन नानी माँ ने बदले में रौनक के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बच्चे तुम मेरे लिए मेरी गोरी से कम नहीं हो, मैं मेरे लिए सबकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, और बच्चा इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, और आप लोग बिना बताए थोड़ी ना गए थे, आप अपने दादाजी को बताकर गए थे, मुझे भी बताकर गए थे, ये थोड़ी ना पता था कि वहाँ पर इस तरह से हादसा हो जाएगा। ये बताओ, अगर लोगों को पहले से ही पता चलने लग जाए कि बाहर जाकर इस तरह से कोई हादसा हो सकता है, तो कोई घर से तो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रौनक को गले से लगा लिया था, और रश्मि भी आकर नानी माँ के गले से लग गई थी और घूर कर आकाश को देखने लगी, क्योंकि जब से रश्मि वहाँ से लौटी थी, आकाश ने रश्मि से सीधे मुँह बात नहीं की थी, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सिर्फ इसीलिए आकाश अब रश्मि को देखकर सीधा अपने कमरे में चला गया था, और रश्मि धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली गई थी। आकाश खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। रश्मि ने सीधा जाकर आकाश को पीछे से गले से लगा लिया था और गिल्टी टोन में बोली, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज़ हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह से नाराज़ मत होइए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज़ मुझसे बातें कीजिए, मुझे डांटिए धमकाइए, लेकिन प्लीज़ मुझसे बातें कीजिए। ये बोलकर रश्मि आकाश को उससे बात करने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी आकाश ने पीछे मुड़कर रश्मि को जोरों से गले से ला लिया और आंखें बंद करके बोला, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है मेरा क्या होता? तुम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी और मुझे इस तरह से छोड़कर तो कभी नहीं जाओगी। तुम्हें जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊँगा। ये बोलकर आकाश अब बड़े ही प्यार शब्दों में रश्मि को समझाने लगा था, तो रश्मि ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आकाश ने दिल खोलकर रश्मि को प्यार किया था। वेल, वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि आस्था पर हमला हुआ था, और जिन लोगों ने आस्था पर गंदी और बुरी नज़र डाली थी उनको अरमान ने बड़ी ही भयानक सज़ा दी थी, और अरमान के आदमियों ने उन सब की डेड बॉडी को उनके घर पर भिजवा दिया था। लेकिन अबीर सिंह राठौर इस वक्त गुस्से से पागल हो उठा था, और अचानक अबीर सिंह राठौर ने एक बड़ा ही ड्रास्टिक स्टेप ले लिया था। जिनकी बॉडी उनके घर भिजवाई गई थी उन सब की बॉडी को मुखाग्नि देने से पहले ही अबीर सिंह राठौर ने अपने पास बुला दिया था और सीधा बम से लगाकर उड़ा दिया था। अबीर सिंह राठौर का मानना था कि जिसने भी उसके बटरफ्लाई पर गंदी नज़र डाली है उसे इस तरह से पूरे रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि नहीं दी जा सकती है, इसीलिए अबीर सिंह राठौर ने सीधा उनके लाश को बम से चला दिया था। अबीर सिंह राठौर उस वक्त बड़ा ही भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था। अबीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अबीर सिंह राठौर डेस्परेटली अरमान से अब उस जमीन के साथ साथ आस्था को भी पाना चाहता था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर को ये लग रहा था कि वो अरमान सिंघानिया ने उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने पास रखा हुआ था। वेल, अबीर सिंह राठौर अंडरवर्ल्ड किंग तो बन ही चुका था, लेकिन अगर वो जमीन को हासिल कर लेता है तो उसके जितना अमीर बिलियनियर कोई भी नहीं था, और उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं रहने वाला था, और अरमान सिंघानिया के आधे से ज्यादा पावर उस जमीन से थी, ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। इसके लिए उसने अलग ही तरह की खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया था।